एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज की इस ज्ञान गोष्ठी में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो हम रोज सुनते तो हैं, राजनीति में खूब इस्तेमाल भी होता है, लेकिन शायद हमेशा ठीक से समझते नहीं। उदारवाद यानी लिबरलिज्म।
हाँ बिल्कुल, ये शब्द जितना आम लगता है ना उतना ही आप कह सकते हैं पेचीदा भी है। और इसे समझने के लिए आज हम सहारा ले रहे हैं माइकल फ्रीडन की दो बहुत ही महत्वपूर्ण किताबों का, लिबरलिज्म और लिबरलिज्म अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
हाँ, फ्रीडन जो इस विषय के मतलब काफी जाने माने विशेषज्ञ हैं।
बिल्कुल,
और ये विषय इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि लिबरल या उदार होने का आखिर मतलब क्या है, इस पर तो लगातार बहस चलती ही रहती है, है ना? क्या ये कोई एक सीधी साधी विचारधारा है या फिर इसके कई अलग अलग रंग हैं, कई परतें हैं? कई बार तो ऐसा लगता है कि अमेरिका वाला लिबरल कुछ और ही होता है, यूरोप वाला कुछ और,
और भारत में तो मतलब कुछ और ही निकाल लिया जाता है कई बार।
हाँ बिल्कुल।
तो देखिए, यही पहेली सुलझाने की कोशिश करेंगे आज। फ्रीडन हमें दिखाते हैं कि उदारवाद कोई ऐसी चीज नहीं है जो पत्थर की लकीर हो। ये तो एक बहती नदी जैसा है, लगातार विकसित होता हुआ, अलग अलग माहौल में आप कह सकते हैं अलग रूप लेता हुआ।
अच्छा,
तो आज का हमारा मिशन यही है कि फ्रीडन के नजरिए से उदारवाद की इस जटिलता को, इसके लचीलेपन को और इसकी जो अंदरूनी बनावट है उसको समझें।
तो ठीक है, बातचीत शुरू करने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि माइकल फ्रीडन है कौन, मतलब उदारवाद पर उनकी बात में ऐसा क्या खास है कि हम आज उनकी किताबों पर इतनी गहराई से चर्चा कर रहे हैं?
देखिए, माइकल फ्रीडन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में राजनीति के एमेरिटस प्रोफेसर हैं और दुनिया भर में उन्हें राजनीतिक विचारधाराओं के अध्ययन के, आप कह सकते हैं, सबसे बड़े नामों में गिना जाता है।
ओके।
उनकी सबसे खास बात है विचारधाराओं को समझने का उनका अपना एक अनूठा तरीका, जिसे वो मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं।
मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच, रूपात्मक दृष्टिकोण, ये सुनने में थोड़ा सा अकादमिक सा लगता है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ?
हाँ, आसान शब्दों में कहें तो फ्रीडन विचारधाराओं को कुछ तय नियमों या सिद्धांतों का एक सेट नहीं मानते।
बिल्कुल नहीं।
अच्छा, वो इन्हें जुड़े हुए विचारों मतलब कॉन्सेप्ट्स का एक ढांचा या एक नेटवर्क मानते हैं। आप इसे एक परिवार की तरह सोचिए।
परिवार की तरह?
हाँ, जैसे परिवार के सदस्य अलग अलग दिखते हैं पर उनमें कुछ पारिवारिक समानताएं होती हैं ना, और वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फ्रीडमन कहते हैं कि विचारधारा में भी कुछ मूल विचार होते हैं, जैसे उदारवाद में स्वतंत्रता है, समानता है, तर्क है, लेकिन अलग अलग समय और संदर्भ में इन विचारों का आपस में क्या रिश्ता है, उनकी अहमियत कितनी है, ये बदल जाता है।
अच्छा,
कौन सा विचार केंद्र में है, कौन सा थोड़ा किनारे पर है, यही चीज उस विचारधारा के अलग अलग रूप तय करती है।
दिलचस्प। यानी वो उदारवाद को किसी एक बनी बनाई मूर्ति की तरह नहीं देख रहे, बल्कि एक बदलते हुए, एक तरह से जीते जागते नक्शे की तरह देख रहे हैं, जिसमें अलग अलग हिस्सों का आपसी कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और उनकी खासियत सिर्फ ये नहीं कि वो सिद्धांत गढ़ते हैं, वो ये भी बहुत गहराई से समझते हैं कि कैसे इन उदारवादी विचारों ने असल दुनिया की राजनीति को, सरकारों की नीतियों को और हमारी संस्थाओं को शक्ल दी है। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि विचार क्या हैं, बल्कि ये भी कि वो असल में काम कैसे करते हैं, बदलते कैसे हैं। और इसी वजह से वो उदारवाद के इतने लंबे इतिहास और आज के जो अलग अलग रूप हैं उनका विश्लेषण इतने अच्छे से कर पाते हैं।
तो फिर फ्रीडन की इन किताबों का निचोड़ क्या निकलता है? वो उदारवाद के बारे में सबसे जरूरी बात क्या बताना चाह रहे हैं?
देखिए, उनका सबसे बड़ा तर्क जो बार बार सामने आता है वो यही है कि उदारवाद कोई एक बंदा बंधाया राजनीतिक दर्शन नहीं है।
बिल्कुल नहीं।
ओके, ये एक बहुत ही जटिल, लगातार विकसित होती हुई विचारधारा है। इसने इतिहास के अलग अलग मोड़ों पर खुद को ढाला है, नई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन फिर भी कुछ बुनियादी बातों पर, जैसे व्यक्ति की अहमियत और स्वतंत्रता पर, टिकी रही है। वो इस आम सोच को तोड़ते हैं कि लिबरलिज्म का कोई एक ही मतलब होता है।
यानी उदारवाद के कई चेहरे हैं, जैसा आपने पहले भी कहा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो अमेरिका में खुद को लिबरल कहता है और जो मान लीजिए यूरोप में सामाजिक लोकतंत्र की बात करता है?
हाँ, वो दोनों एक ही उदारवादी परिवार के सदस्य हो सकते हैं, भले ही उनकी नीतियां काफी अलग दिखती हों।
हाँ बिल्कुल, यही फ्रीडन समझाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि उदारवाद एक परिवार जैसा है जिसमें कई सदस्य हैं।
जैसे
शास्त्रीय उदारवाद है, जिसे क्लासिकल लिबरलिज्म कहते हैं, जो सरकार के कम से कम दखल की बात करता है, फिर है सामाजिक उदारवाद यानी सोशल लिबरलिज्म, जो मानता है कि सच्ची आज़ादी के लिए समाज और सरकार की मदद भी ज़रूरी है।
हाँ।
और आजकल हम नव उदारवाद या नियो लिबरलिज्म की भी बहुत बात सुनते हैं, जो बाजार को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। इन सब में कुछ पारिवारिक समानताएं तो हैं, मतलब कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं।
जैसे
स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद।
हाँ बिल्कुल, लेकिन कौन सा विचार ज्यादा अहम है और उनका आपस में रिश्ता कैसा है, ये अलग अलग होता है। जैसे परिवार में भी कोई बच्चा दादाजी के ज्यादा करीब होता है, कोई नानी जी के।
हाँ हाँ, सही उदाहरण है। तो किताब सिर्फ इन अलग अलग प्रकारों को गिनाती भर नहीं है?
नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। किताब उदारवाद की जड़ों तक जाती है। ज्ञानोदय से यानी वो 17वीं-18वीं सदी का दौर,
हाँ।
जब यूरोप में तर्क, विज्ञान और व्यक्तिगत अधिकारों पर बहुत जोर बढ़ा।
हाँ, इनलाइटनमेंट जिसे कहते हैं।
बिल्कुल, वहां से लेकर आज की जो बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, मल्टीकल्चरलिज्म है, उन तक फ्रीडम दिखाते हैं कि कैसे स्वतंत्रता, समानता, तर्क जैसे जो मूल विचार हैं, उनको अलग अलग विचारकों ने और आंदोलनों ने समय के साथ बार बार परिभाषित किया है। उनके मायने बदले हैं, उनकी जगह बदली है।
अच्छा,
तो ये सिर्फ विचारों का इतिहास नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे इन बदलते विचारों ने हमारी दुनिया को, हमारी संस्थाओं को और हमारी राजनीति को गढ़ा है।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। फ्रीडन उदारवाद के इस ढांचे को, इस परिवार को समझाते कैसे हैं? वो कौन से मूल विचार हैं, आपने कहा कोर कॉन्सेप्ट्स, जो इस परिवार के सभी सदस्यों में पाए जाते हैं, चाहे उनकी शक्ल थोड़ी बदल क्यों ना जाए?
फ्रीडम सबसे पहले अपनी वो रूपात्मक विधि इस्तेमाल करते हुए उदारवाद के कोर यानी मूल विचारों को पहचानते हैं। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आप कह सकते हैं, जिनके बिना कोई विचारधारा उदारवादी कहला ही नहीं सकती। हालांकि उनकी आपसी जमावट उनका अरेंजमेंट बदल सकता है।
हाँ, तो कौन से हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये मूल विचार?
देखिए, मुख्य तौर पर हैं स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिटी, हर व्यक्ति की अपनी एक अलग अहमियत, तर्कसंगतता रीजन, प्रगति प्रोग्रेस, ये विश्वास कि समाज बेहतर हो सकता है, और कुछ हद तक सामाजिकता या सामान्य हित भी, सोशिबिलिटी यानी ये मानना कि इंसान अकेले नहीं समाज में रहता है।
ठीक है,
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसा हमने कहा, इन शब्दों का मतलब भी तो स्थिर नहीं है, और कौन सा विचार कब ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा ये भी लगातार बदलता रहता है।
मतलब स्वतंत्रता का मतलब भी बदल सकता है, ये तो इतना फंडामेंटल विचार लगता है।
और यहीं पर उदारवाद की सबसे दिलचस्प बात छिपी है मेरे ख्याल से। फ्रीडन बताते हैं कि अकेले स्वतंत्रता के ही कम से कम दो मुख्य अर्थ हैं।
दो? कौन कौन से?
एक है नकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव लिबर्टी। इसका मतलब है बाहरी रुकावटों से आज़ादी, मतलब सरकार आप पर बेवजह रोक ना लगाए, आपकी बातों को सेंसर ना करे, वगैरह वगैरह।
ठीक है, यानी फ्रीडम फ्रॉम।
बिल्कुल। दूसरी है सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव लिबर्टी। इसका मतलब है अपनी काबिलियत को निखारने, अपने लक्ष्य हासिल करने की असल क्षमता और अवसर का होना।
अच्छा, यानी फ्रीडम टू।
हाँ बिल्कुल, और इसके लिए शायद शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार के मौकों जैसी चीजों की जरूरत पड़े, जिसमें हो सकता है सरकार की भी कुछ भूमिका हो।
अच्छा, तो जो पुराने वाले यानी शास्त्रीय उदारवादी थे, क्लासिकल लिबरल्स, वो पहली वाली नकारात्मक स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर देते थे कि भाई सरकार दूर रहे, व्यक्ति आजाद।
हाँ, मुख्य रूप से।
और जो बाद में आए सामाजिक उदारवादी, सोशल लिबरल्स, वो दूसरी वाली सकारात्मक स्वतंत्रता को भी उतना ही जरूरी मानने लगे।
बिल्कुल, यहीं से उदारवाद के अलग अलग रास्ते निकलने लगते हैं। फ्रीडन इसके ऐतिहासिक विकास को इसी नजरिए से देखते हैं। वो जॉन लॉक जैसे ज्ञानोदय के विचारकों से शुरू करते हैं।
जॉन लॉक, हाँ, प्राकृतिक अधिकार वाले।
हाँ, जिन्होंने कहा कि हर इंसान के कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, और सरकार का काम बस इन अधिकारों की रक्षा करना है, उनमें दखल देना नहीं। ये नकारात्मक स्वतंत्रता का क्लासिक उदाहरण है। फिर एडम स्मिथ आए, जिन्होंने आर्थिक क्षेत्र में लेसे फेयर यानी सरकारी हस्तक्षेप की वकालत की। जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति की आजादी, खासकर सोचने और बोलने की आजादी पर बहुत गहराई से लिखा।
लेकिन फिर आई औद्योगिक क्रांति, शहर बढ़े, फैक्ट्रियां लगी, और साथ में आई नई तरह की समस्याएं, गरीबी, भयंकर असमानता, मजदूरों का शोषण। क्या इसने उदारवाद की सोच को चुनौती नहीं दी?
जबरदस्त चुनौती दी, बहुत बड़ी चुनौती। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में ये साफ दिखने लगा था कि भाई सिर्फ कानूनी आजादी काफी नहीं है अगर लाखों लोग गरीबी और बेबसी में जी रहे हों।
सही बात है।
यहीं से टीएच ग्रीन और एलटी हॉबहाउस जैसे विचारकों ने नए उदारवाद या सामाजिक उदारवाद की नींव रखी। उन्होंने तर्क दिया कि सच्ची स्वतंत्रता के लिए सिर्फ रोक टोक करना होना काफी नहीं है, बल्कि अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए जरूरी साधन और अवसर भी होने चाहिए।
जैसे?
जैसे अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, काम करने लायक माहौल, ये सब जरूरी हैं।
यानी उदारवाद का फोकस बदल गया। व्यक्ति की स्वतंत्रता अब भी केंद्र में थी, लेकिन उसे हासिल करने के लिए समाज और सरकार की भूमिका को ज्यादा सकारात्मक रूप में देखा जाने लगा। पहले जिसे दखल अंदाजी माना जाता था, अब उसे जरूरी मदद समझा जाने लगा।
हाँ बिल्कुल। और फिर 20वीं सदी में दो विश्व युद्धों ने, और खासकर 1930s की जो महामंदी थी, ग्रेट डिप्रेशन, उसने सोच को और मजबूत किया।
कीन्स का समय।
हाँ, जॉन मेनार्ड कीन्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने दिखाया कि बाजार हमेशा अपने आप सही नहीं चलते, और अर्थव्यवस्था को संभालने और रोजगार पैदा करने के लिए सरकार का दखल जरूरी हो सकता है। ये शास्त्रीय उदारवाद की सरकार दूर रहे वाली सोच से एक बहुत बड़ा बदलाव था।
हाँ, ये तो था।
और फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई पश्चिमी देशों में इसी सामाजिक और कीन्जियन उदारवाद के आधार पर कल्याणकारी राज्य बने, वेलफेयर स्टेट्स, जहां सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन जैसी चीजों की जिम्मेदारी लेने लगी।
लेकिन फिर 1970s और 80s के दशक में, थैचर और रेगन के जमाने में, एक बार फिर हवा बदली। मुक्त बाजार, निजीकरण, सरकारी खर्च में कटौती, इन सब बातों पर जोर दिया जाने लगा। इसे नवोदारवाद, न्यूलिबरलिज्म कहा गया। क्या फ्रीडमन इसे भी उदारवाद के परिवार का ही हिस्सा मानते हैं?
हाँ, फ्रीडमन इसे भी उदारवाद के उस व्यापक परिवार का एक सदस्य मानते हैं, हालांकि ये सामाजिक उदारवाद से काफी अलग है, ये तो जाहिर है। नवोदारवाद बाजार और प्रतिस्पर्धा को समाज के लगभग हर क्षेत्र में लागू करने की कोशिश करता है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता को मुख्य रूप से आर्थिक चुनाव करने की स्वतंत्रता के रूप में देखता है। ये सरकार की भूमिका को फिर से बहुत सीमित करना चाहता है।
तो फ्रीडम के नजरिए से ये भी उदारवादी है, बस एक अलग रूप।
हाँ, उनके नजरिए से ये भी उदारवाद के उन्हीं मूल विचारों जैसे व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, सीमित सरकार का ही एक अलग विन्यास या कॉन्फिगरेशन है, जो शायद 1970 के दशक की आर्थिक चुनौतियों और कल्याणकारी राज्य की कुछ कथित समस्याओं की प्रतिक्रिया में उभरा। उनका पॉइंट यही है कि कोई एक असली उदारवाद नहीं है, ये एक बहुरूपी विचारधारा है जो अलग अलग हालात में अलग अलग शक्लें लेती रहती है।
तो इस पूरी यात्रा को देखते हुए उदारवाद के बारे में फ्रीडन के विश्लेषण से कौन से मुख्य सबक या संदेश उभर कर आते हैं? क्या खास बातें हैं जो हमें इस विचारधारा को, इसकी जटिलता को समझने में मदद करती हैं?
देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो है विचारधारात्मक लचीलापन और अनुकूलन क्षमता, मतलब आइडियोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी।
लचीलापन।
हाँ, उदारवाद की ताकत उसकी पत्थर की लकीर होने में नहीं है, बल्कि बदलने और नई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता में है। इसने समाजवाद, रूढ़िवाद जैसी दूसरी विचारधाराओं की चुनौतियों का सामना किया है, और अक्सर उनकी कुछ सही बातों को अपने अंदर समाहित भी किया है।
बिना अपनी पहचान खोए।
हाँ, बिना अपनी मुख्य पहचान जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र का सम्मान को छोड़े, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
ये दिलचस्प है। मतलब ये एक तरह से सीखता भी है, अपनी आलोचनाओं से प्रभावित भी होता है। अच्छा, दूसरा क्या होगा?
दूसरा, मूल उदारवादी अवधारणाओं की विवादित प्रकृति, मतलब कंटेस्टेड नेचर ऑफ कोर कॉन्सेप्ट्स।
विवादित प्रकृति।
हाँ, मतलब स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये उदारवाद के मूल शब्द हैं, लेकिन इनका कोई एक हमेशा के लिए तय मतलब नहीं है। खुद उदारवादियों के बीच ही इन पर लगातार बहस चलती रहती है कि इनका असली मतलब क्या है और इन्हें कैसे हासिल किया जाए, जैसा हमने स्वतंत्रता के उदाहरण में देखा ना।
हाँ बिल्कुल।
फ्रीडन मानते हैं कि ये बहस उदारवाद की कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी जान है। यही चीज उसे जिंदा रखती है, प्रासंगिक बनाए रखती है।
हाँ, ये तो हम रोजमर्रा की बहसों में भी देखते हैं। भारत में ही देख लीजिए, स्वतंत्रता का मतलब कभी अभिव्यक्ति की आजादी होता है, कभी धर्म पालन की, कभी आर्थिक मौके मिलने की। हर बहस में इसका मतलब थोड़ा सा बदल जाता है ना?
बिल्कुल। तीसरा संदेश है व्यक्तिगत हित और सामूहिक भलाई के बीच का तनाव और संतुलन, मतलब टेंशन एंड बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव गुड।
ये तो हमेशा की दुविधा है।
हाँ, और उदारवाद हमेशा से इस दुविधा से जूझता रहा है कि व्यक्ति के अधिकारों और पूरे समाज की भलाई के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। शास्त्रीय उदारवाद व्यक्ति पर ज्यादा जोर देता है, जबकि सामाजिक उदारवाद समाज की जरूरत पर भी ज्यादा ध्यान देता है। यह संतुलन कहाँ होना चाहिए, इस पर उदारवाद के भीतर हमेशा एक बहस, एक खींचतान जलती रहती है।
चौथा,
लोकतंत्र से इसका जटिल रिश्ता, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद डेमोक्रेसी। उदारवाद आमतौर पर लोकतंत्र का पक्का समर्थक होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसे एक डर भी हमेशा सताता है, बहुमत की तानाशाही का।
टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी।
हाँ, यानी कहीं ऐसा ना हो कि बहुमत अपनी ताकत के बल पर अल्पसंख्यकों या किसी व्यक्ति विशेष के बुनियादी अधिकारों को कुचल दे। इसीलिए उदारवादी लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव जीतना काफी नहीं होता है।
अच्छा।
हाँ, बल्कि संविधान, कानूनों का राज, शक्तियों का बंटवारा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा भी बहुत जरूरी मानी जाती है। यह सब उदारवादी चिंताएं हैं।
ठीक है, और पांचवा?
और पांचवा, आर्थिक सोच का लगातार विकास, एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक डायमेंशंस। जैसा हमने देखा, पूरी तरह मुक्त बाजार, लेजे फेयर से लेकर मिश्रित अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी राज्य तक, उदारवाद ने आर्थिक नीतियों के मामले में भी गजब का लचीलापन दिखाया है। कोई एक उदारवादी आर्थिक मॉडल नहीं है, ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था को कैसे चलाया जाए। इस पर भी उदारवाद के अंदर अलग अलग राय रही हैं और समय के साथ बदलती रही हैं।
फ्रीडम की सोच को और बेहतर समझने के लिए क्या उनकी किताबों से कुछ ऐसे खास विचार या पंक्तियां हैं जो उनके विश्लेषण का निचोड़ पेश करती हों? कुछ ऐसी बातें जो दिमाग में रह जाएं?
हाँ, बिल्कुल हैं, कई हैं। जैसे उनके काम का सार एक तरह से इस बात में झलकता है, ये उनके विचार के तौर पर समझिए। उदारवाद कोई एक सिद्धांत नहीं, बल्कि सिद्धांतों का एक परिवार है।
सिद्धांतों का परिवार?
हाँ, ये परिवार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की साझा चाहत से जुड़ा है, लेकिन इस बात पर बटा हुआ है कि स्वतंत्रता का असल मतलब क्या है और इसे पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ये पंक्ति उदारवाद की अनेकता में एकता, या कहिए एकता में अनेकता को बहुत अच्छे से पकड़ती है।
ये वाकई बहुत सटीक है। इसमें उसकी अंदरूनी विविधता भी है और जुड़ाव भी, दोनों दिखते हैं। और कोई खास बात?
एक और विचार जो उनके विश्लेषण के तरीके को दिखाता है वो ये है, उदारवाद की रूपात्मक संरचना यानी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिखाती है कि कैसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल विचार अलग अलग व्यवस्थाओं, अलग अलग कॉन्फिग्रेशंस में सजाए जाते हैं। इससे उदारवादी सोच के अलग अलग रूप बनते हैं, पर फिर भी उनमें एक पहचानी जा सकने वाली पारिवारिक समानता बनी रहती है। यानी हमें सिर्फ शब्दों को नहीं देखना, बल्कि उनके आपसी रिश्तों के बदलते हुए पैटर्न को समझना होगा।
यानी सिर्फ लिस्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, उनके बीच का कनेक्शन क्या है, ढांचा कैसा है, वो समझना जरूरी है।
बिल्कुल। और एक बात जो उदारवाद की ऐतिहासिक सफलता की एक वजह बताती है वो है, शायद उदारवाद की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि वो अपने आलोचकों से सीखता है और उनकी जायज आपत्तियों को अपनी मूल प्रतिबद्धताओं को छोड़े बिना अपने अंदर शामिल कर लेता है।
अच्छा।
ये उसके जिंदा रहने और बदलते वक्त के साथ कदम मिलाने की क्षमता पर जोर देता है। ये दिखाता है कि वो कोई बंद, कोई कट्टर विचारधारा नहीं है, उसमें सीखने की गुंजाइश है।
ये तो एक तरह से ये भी दिखाता है कि किसी भी विचार के लिए बहस, असहमति और खुद को लगातार सुधारते रहने की क्षमता कितनी जरूरी है। ये सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि सवाल पूछना और बदलते रहना सिखाता है। ये सब बातें सुनने में तो बहुत ही ज्ञानवर्धक लग रही हैं, लेकिन क्या फ्रीडमैन के इस नज़रिए का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या आज की दुनिया को समझने में कोई व्यवहारिक फ़ायदा भी है? मतलब हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
हाँ, बिल्कुल है, कई तरीकों से। सबसे पहला तो राजनीतिक बहसों को बेहतर ढंग से समझना।
अच्छा, कैसे?
देखिए, जब हम टीवी पर नेताओं को सुनते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कोई लिबरल नीतियों की बात कर रहा है या किसी को लिबरल या एंटी लिबरल कहा जा रहा है, तो फ्रीडम का नजरिया हमें उस सतही लेबलिंग से आगे देखने में मदद करता है। हम समझ सकते हैं कि शायद बात उदारवाद के अलग अलग संस्करणों की हो रही है। कोई स्वतंत्रता का मतलब सरकार का कम दखल समझ रहा है, तो कोई अवसर की समानता। इससे बहस की परतें खुल सकती हैं और हम शायद ज्यादा गहराई से समझ पाएं कि असल मुद्दा क्या है।
बिल्कुल। जैसे कोई कहे कि टैक्स कम करना एक उदारवादी कदम है क्योंकि इससे लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है, वहीं कोई दूसरा कहे कि सबको अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देना उदारवादी कदम है क्योंकि इससे लोगों को असल मायने में अपनी जिंदगी चुनने की स्वतंत्रता मिलती है।
हाँ,
फ्रीडम के नज़रिए से देखें तो ये दोनों ही उदारवादी दावे हो सकते हैं ना, बस उनकी बुनियाद में स्वतंत्रता की समझ और प्राथमिकता शायद अलग अलग है।
बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरा फायदा है नीतियों का विश्लेषण करने में, पॉलिसी एनालिसिस में। फ्रीडम की समझ हमें याद दिलाती है कि आज की जो नई चुनौतियां हैं, जैसे मान लीजिए जलवायु परिवर्तन है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता असर है या बढ़ती आर्थिक असमानता है, इनके लिए उदारवादी समाधान ढूंढते वक्त हमें पुराने नुस्खों से बंधे रहने की जरूरत नहीं है।
अच्छा,
नए रचनात्मक समाधान भी उदारवादी हो सकते हैं अगर वो व्यक्तिगत गरिमा, तर्कसंगत बहस और अवसरों की समानता जैसे जो मूल उदारवादी मूल्य हैं उन पर आधारित हों।
तीसरा फायदा क्या हो सकता है?
तीसरा, शिक्षा और आलोचनात्मक सोच के लिए बहुत उपयोगी है, एजुकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग। ये हमें सिखाता है कि राजनीतिक शब्द पत्थर की लकीर नहीं होते, उनके मायने बदलते हैं, उन पर बहस होती है। यह हमें रटी रटाई परिभाषाओं से आगे जाकर विचारों के आपसी रिश्तों को समझने और किसी भी दावे के पीछे छुपे मूल्यों और प्राथमिकताओं का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम ज्यादा गहरे सवाल पूछना सीखते हैं।
ये बहुत जरूरी है।
और आखिर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में भी यह मददगार है, इंटरनेशनल रिलेशंस। जब पश्चिमी देश दुनिया भर में उदारवादी मूल्यों जैसे मानवाधिकार या लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो फ्रिडन का विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि इसका मतलब हर जगह एक जैसा मॉडल थोपना शायद नहीं होना चाहिए।
क्यों?
क्योंकि उदारवाद के मूल सिद्धांत अलग अलग संस्कृतियों और समाजों में अलग अलग संस्थागत रूप ले सकते हैं जब तक कि वे मूल भावना को बनाए रखें। इससे शायद सांस्कृतिक टकराव को कुछ कम करने में मदद मिल सकती है, ज्यादा संवेदनशील रवैया अपनाने में।
तो इस पूरी गहरी और काफी दिलचस्प चर्चा के अंत में अगर मैं पूछूं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख या सबसे आश्चर्यजनक बात क्या रही फ्रिडन के नजरिए से उदारवाद को समझने में, क्या चीज आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि राजनीतिक विचारधाराएं और खासकर उदारवाद कितनी गतिशील और लचीली होती हैं, कितनी वाइब्रेंट होती हैं। उनकी जो अंदरूनी जटिलता है, उनके आपसी मतभेद हैं और वो जो लगातार चलने वाली बहसें हैं, वो उनकी कमजोरी नहीं है बल्कि असल में उनकी ताकत है।
अच्छा,
यही चीज उन्हें समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखती है, उन्हें एक तरह से मरने नहीं देती। और फ्रीडन का जो रूपात्मक दृष्टिकोण है वो इस जटिलता को बिना जरूरत से ज्यादा सरल बनाए समझने का एक बहुत शक्तिशाली औजार देता है। यह हमें राजनीतिक मतभेदों को शायद थोड़ी कम कड़वाहट के साथ और ज्यादा समझदारी से देखने में मदद कर सकता है।
और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा अटकी वो शायद ये है कि उदारवाद का खुद पर सवाल उठाना, अपनी आलोचना को सुनना और लगातार बदलते रहना ही शायद वो वजह है कि ये इतने उतार चढ़ाव के बावजूद आज भी दुनिया की सबसे प्रभावशाली विचारधाराओं में से एक बनी हुई है। ये दिखाता है कि किसी भी विचार या किसी भी समाज के लिए खुलापन, बहस की गुंजाइश रखना और खुद को सुधारने की इच्छा रखना कितना जरूरी है। फ्रीडन का काम हमें याद दिलाता है कि उदारवाद शायद कुछ तयशुदा जवाबों का सेट उतना नहीं है जितना कि सोचने का, सवाल पूछने का और जवाब ढूंढते रहने का एक तरीका है, और एक ऐसा तरीका जो खुद भी वक्त के साथ बदलता रहता है। ये अपने आप में ही एक बहुत उदार विचार लगता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।